अध्याय 12 केस अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड। केस अध्ययन विधि की परिभाषा एवं स्वरूप मीनिंग एंड नेचर ऑफ केस स्टडी मेथड। मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में केस अध्ययन विधि का प्रयोग आरंभ से ही किया जाता रहा है। फलस्वरूप इन विज्ञानों के शोधों में इसकी विशेष अहमियत मानी गई है। सामाजिक शोध में केस अध्ययन विधि का उपयोग सबसे पहले फ्रेडली प्ले द्वारा 1840 में पारिवारिक बजट के अध्ययन में किया गया। पैराग्राफ चेंज। केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण एवं विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय, घटना, नीति, संगठन आदि को लिया जाता है। स्पष्ट हुआ कि तब केस अध्ययन विधि में जो केस होता है उससे तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया या घटना से होता है जिसका एक आबद्ध संदर्भ होता है, अर्थात केस में सम्मिलित की गई घटना या इकाई की अपनी चहरदीवारी होती है। इसी अर्थ में पीवी यंग 1974 ने केस अध्ययन विधि को इस प्रकार परिभाषित किया है, कोट, केस अध्ययन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामाजिक इकाई की जीवनी का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जा सकता है, अनकोट। गुडे तथा हॉट ने भी केस अध्ययन विधि के बारे में बतलाते हुए कहा है कि यह एक ऐसी विधि है जिसके सहारे किसी भी सामाजिक इकाई का अध्ययन पूर्ण रूपेण किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस विधि में किसी सामाजिक इकाई, जो एक व्यक्ति भी हो सकता है या कोई अन्य सामाजिक समूह भी हो सकता है, के एकात्मक स्वरूप को बरकरार रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। गुडे तथा हॉट के शब्दों में केस अध्ययन विधि को इस प्रकार परिभाषित किया है, कोट, केस अध्ययन सामाजिक आंकड़ों को संगठित करने का एक तरीका है ताकि अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक वस्तु के एकात्मक स्वरूप को बनाया जा सके। थोड़े भिन्न ढंग से इसकी अभिव्यक्ति करते हुए यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा उपागम है जिसमें किसी भी सामाजिक इकाई को पूर्ण रूपेण ढंग से देखा जाता है। करीब करीब हमेशा ही इस उपागम में इकाई, जो एक व्यक्ति, एक परिवार या अन्य सामाजिक समूह, प्रक्रियाओं या संबंधों का एक सेट या संपूर्ण संस्कृति भी हो सकता है, का विकास सम्मिलित होता है, अनकोट। थियोडोरसन एवं थियोडोरसन 1969 ने केस अध्ययन को इस प्रकार परिभाषित किया, कोट, केस अध्ययन किसी व्यक्ति केस के गहन विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक घटना के अध्ययन की विधि है। केस कोई एक व्यक्ति, एक समूह, एक घटना, एक प्रक्रिया, एक समुदाय, एक समाज या सामाजिक जिंदगी की कोई अन्य इकाई हो सकता है। यह बहुत सारे विशिष्ट विवरण के गहन विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करता है जिसे अन्य विधियों में प्राय उपेक्षा की जाती है, अनकोट। डीन 1984 ने केस अध्ययन को परिभाषित करते हुए कहा है, कोट, यह एक अनुभविक जांच है जो एक वास्तविक जिंदगी के संदर्भ में समकालीन घटनाओं का अन्वेषण तब करता है जब घटना तथा संदर्भ के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं होती है तथा जिसमें सबूत के बहुत सारे स्रोतों का उपयोग किया जाता है, अनकोट। इन परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर हमें केस अध्ययन विधि के स्वरूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का पता चलता है जिसका वर्णन निम्नांकित है, एक, केस अध्ययन विधि में किसी सामाजिक इकाई के विकासात्मक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में केस अध्ययन में सामाजिक इकाई का अध्ययन इसके विकास के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में किया जाता है। दो, सामाजिक इकाई के रूप में एक व्यक्ति विशेष का भी अध्ययन किया जाता है जा सकता है या अन्य सामाजिक समूह जैसे परिवार या किसी संस्कृति का भी अध्ययन किया जा सकता है। तीन, केस अध्ययन विधि की एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें सामाजिक इकाई के एकात्मक स्वरूप को टूटने नहीं दिया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अध्ययन किया जाने वाला सामाजिक इकाई को संपूर्ण रूप से एज अ होल अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी परिवार को एक सामाजिक इकाई के रूप में अध्ययन करने का निश्चय किया गया है तो उस परिवार की ऐतिहासिक घटना चक्रों का ब्यौरा तैयार करके परिवार को विभिन्न उप इकाई में न बांटकर उसका संपूर्ण रूप से एज होल अध्ययन करने की कोशिश की जाती है। चार, केस अध्ययन विधि में अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई से क्या, व्हाट तथा क्यों दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इस विधि में शोधकर्ता सामाजिक इकाई के जटिल व्यवहार परक पैटर्न की व्याख्या तो करता ही है, साथ ही साथ वह उन कारकों का भी पता लगाता है जिनसे इस तरह के जटिल व्यवहार पर पैटर्न की उत्पत्ति हुई होती है। दूसरे शब्दों में यह सामाजिक इकाई का वर्णन तथा व्याख्या दोनों ही करता है। केस अध्ययन के चार प्रमुख विशेषताएं, फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस स्टडी, केस अध्ययन के चार प्रमुख विशेषताएं बतलाए गए हैं। 2004 के अनुसार वह चार विशेषताएं निम्नांकित हैं। एक, केस अध्ययन एक सीमाबद्ध विधि है। केस स्टडीज आर बाउंडेड सिस्टम। केस अध्ययन एक सीमाबद्ध विधि होती है क्योंकि इसमें जिस केस का विश्लेषण किया जाता है उसकी सीमाएं बाउंड्रीज होती हैं। ये 1984 के अनुसार संदर्भ तथा केस के बीच की सीमा हमेशा स्पष्ट नहीं होती है, परंतु इस सीमा की वास्तविकता निश्चित रूप से होती है। शोधकर्ता विशेष प्रयास करके किस केस की सीमा की पहचान करता है तथा उसका वर्णन करता है। दो, केस अध्ययन में केस कुछ का केस होता है। इन केस स्टडी केस इज द केस ऑफ समथिंग। केस अध्ययन में शोधकर्ता को यह पहचान करना होता है कि केस किस चीज का केस है, क्योंकि इससे उसे विश्लेषण की इकाई के बारे में निर्धारण करने में सुविधा होती है। तीन, केस अध्ययन में केस की संपूर्णता, एकता तथा अखंडता को बचा कर रखने का स्पष्ट प्रयास किया जाता है। There is an obvious attempt to preserve the wholeness, unity and integrity of the case. केस अध्ययन के एक केस की संपूर्णता, एकता तथा उसके अखंडता को बनाकर रखते हुए उसका अध्ययन किया जाता है। चूँकि शोधकर्ता यह जानते हैं कि एक ही केस का प्रत्येक चीज का अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए वे केस के कुछ पहलुओं पर विशिष्ट ध्यान इस प्रकार देते हैं कि उसकी अखंडता पर कोई आँच न आए। चार, केस अध्ययन में आंकड़े के बहुत सारे स्रोतों को तथा बहुत सारे आंकड़े संग्रहण विधियों का उपयोग किया जाता है। इन केस स्टडीज मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा एंड मल्टीपल डेटा कलेक्शन मेथड्स आर यूज्ड। विशेषकर स्वाभाविक परिस्थितियों नेचुरल सेटिंग्स में किए जाने वाले केस अध्ययन में आंकड़ों के भिन्न भिन्न स्रोतों तथा आंकड़े संग्रहण के भिन्न भिन्न विधियों का उपयोग होता है। बहुत से केस अध्ययन में अध्ययनों में प्रेक्षण साक्षात्कार साप्ताहिक रिपोर्ट आदि द्वारा आंकड़े संग्रह किए जा सकते हैं। यद्यपि प्रश्नावली तथा संख्यात्मक आंकड़ों का भी उपयोग किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि केस अध्ययन को हमेशा एक गुणात्मक प्रविधि क्वांटिटेटिव टेक्निक मानना उचित नहीं है, हालांकि अधिकतर केस अध्ययन गुणात्मक ही होते हैं। पैराग्राफ चेंज, स्पष्ट हुआ कि केस अध्ययन की कुछ स्पष्ट विशेषताएँ हैं जो उसे अन्य विधियों से सार्थक रूप से भिन्न करता है। केस अध्ययन विधि के प्रकार, काइंड्स ऑफ केस स्टडी मेथड। केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता किसी स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ कर उसके प्रभाव का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वह सिर्फ उन अवस्थाओं का अवलोकन करता है जो वर्तमान समय या बीते हुए समय में उपस्थित रहकर अध्ययन किए जाने वाले सामाजिक इकाई में परिवर्तन लाता है। व्यवहार परक वैज्ञानिकों ने केस अध्ययन के मुख्य दो उप प्रकार बतलाए हैं जो निम्नांकित हैं, क, अपसरित केस विश्लेषण तथा ख, पृथक नैदानिक केस विश्लेषण। इन दोनों का वर्णन इस प्रकार है। क, अपसरित केस विश्लेषण। केस अध्ययन के इस प्रकार में शोधकर्ता एक ही साथ दो ऐसे केसेस को लेता है जिसमें काफी समानता होते हुए भी भिन्नता होती है, जैसे शोधकर्ता है यदि एक जुड़वा युग्म जिसमें से एक सामान्य है तथा दूसरा मनोविदालिता से ग्रसित है का अध्ययन करता है, तो यह अपसरित केस विश्लेषण का एक अच्छा उदाहरण होगा। इस उदाहरण में दोनों बच्चे चूंकि एकांडी जुड़वा आइडेंटिकल ट्विन हैं, इसलिए इसमें काफ़ी अधिक समानता है, परंतु फिर भी इन दोनों में भिन्नता है। एक मानसिक रूप से ग्रसित है तथा दूसरा सामान्य है। शोधकर्ता इन दोनों बच्चों के तुलनात्मक अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा कि वे कौन कौन कारक हैं जिनके कारण इन दोनों एकांडी जुड़वा बच्चों में इस तरह की भिन्नता डिफरेंसेस हुई है। इस तरह का केस विश्लेषण वार्विक एवं ओसरसन 1973 द्वारा काफ़ी किया जाता है। ख, पृथक नैदानिक केस विश्लेषण। इस प्रकार के केस विश्लेषण विधि में शोधकर्ता व्यक्ति इकाइयों का विश्लेषण उसके विश्लेषण समस्याओं के आलोक में करता है। इस ढंग के केस अध्ययन में शोधकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति के बीच हुए दिनों के घटनाचक्रों का विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और इसके आधार पर एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। इस विधि का प्रयोग मनोविश्लेषण में सर्वाधिक होता है। फ्रॉयड द्वारा अध्ययन किया मशहूर हैंस केस इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। फ्रॉयड ने मानव आत्मिक अनुक्रियता सिद्धांत थियोरी ऑफ ह्यूमन फिजिक रिस्पॉन्स का प्रतिपादन अनेकों पृथक नैदानिक केसेस के विश्लेषण से उत्पन्न तथ्यों के आधार पर किया है। अभी हाल में विक्सन ने एक अध्ययन पृथक नैदानिक केस विश्लेषण द्वारा किया जिसमें ब्रिवर नामक एक बच्चा जो एक काफ़ी धनी माता पिता का संतान था का विश्लेषण किया गया। इस अध्ययन के आधार पर विक्सन धनी परिवार के बच्चों की विशेष समस्याओं से अवगत हुए और उन समस्याओं के समाधान करने के संभावित एवं उपयुक्त उपायों की भी खोज की। केस अध्ययन विधि केस स्टडी मेथड दोनों प्रकार का काफ़ी लोकप्रिय हैं। अंतर इतना ही है कि इन पृथक नैदानिक केस विश्लेषण का प्रयोग नैदानिक परिस्थितियों में अधिक होता है जबकि अपसरित केस विश्लेषण का प्रयोग समान अवस्थाओं में अधिक होता है। कर्व ऑफ चेंज स्टंक ने भी अपने ही द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर बतलाया है कि केस अध्ययन विधि में चूँकि कई प्रकार के केस होते हैं अतः केस अध्ययन भी कई तरह के हो सकते हैं। उन्होंने निम्नांकित तीन तरह के केस अध्ययन का वर्णन किया है। क आंतरिक केस अध्ययन इंटरनल केस स्टडी यह एक ऐसा केस अध्ययन होता है जहां शोधकर्ता इसलिए अध्ययन प्रारंभ करता है क्योंकि वह लक्ष्य केस के बारे में गहराई से जानना चाहता है। ख साधनात्मक केस अध्ययन इंस्ट्रूमेंटल केस स्टडी यह ऐसा केस अध्ययन होता है जहां शोधकर्ता किसी विशेष केस का अध्ययन इसलिए करता है क्योंकि उससे समस्या को समझने में विशेष सूझ उत्पन्न होती है या किस सिद्धांत को परिष्कृत करने में मदद मिलती है। ग सामूहिक केस अध्ययन यह एक ऐसा केस अध्ययन होता है जहां शोधकर्ता साधनात्मक केस अध्ययन का विस्तार कई केसेस का अध्ययन करने के लिए करता है तथा जिसमें घटना सामान्य अवस्था तथा जीव संख्या के बारे में अधिक कुछ सीखने के प्रयास किया जाता है। पैराग्राफ चेंज केस अध्ययन विधि की पूर्व कल्पनाएँ अजम्पशंस ऑफ केस स्टडी मेथड केस अध्ययन विधि की कुछ पूर्व कल्पनाएँ होती हैं जिनमें निम्नांकित प्रमुख हैं। एक इस विधि की एक पूर्व कल्पना यह है कि मानव प्रकृति में एक रूपता होती है हालांकि यह भी सच है कि मानव व्यवहार परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होते रहता है। दो इस विधि की दूसरी पूर्व कल्पना यह होती है कि इसमें संबंधित इकाई स्वाभाविक इतिहास पर आधारित होता है। तीन इस विधि में संबंधित इकाई का विस्तृत अध्ययन संभव हो पाता है। स्पष्ट हुआ कि केस अध्ययन विधि की कुछ अपनी पूर्व कल्पनाएँ हैं। केस अध्ययन विधि के लाभ एवं दोष एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड केस अध्ययन विधि का प्रयोग मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में काफ़ी किया गया है। इस विधि के कुछ लाभ तथा इसमें कुछ खामियां भी पाए गए हैं। इस विधि के प्रमुख लाभ एडवांटेजेस निम्नांकित हैं। एक केस अध्ययन विधि में दो विभिन्न केसेस को लेकर उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। दो केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन के लिए चयन किए गए केस का गहन रूप से अध्ययन संभव है क्योंकि इसमें एक समय में किसी एक केस या सामाजिक इकाई का ही अध्ययन किया जा सकता है। तीन केस अध्ययन विधि द्वारा किसी परिकल्पना के निर्माण में काफ़ी मदद मिलती है। गुडे तथा हार्ट का मत है कि केस अध्ययन विधि से प्राप्त तथ्यों को शोधकर्ता विश्वास के साथ सामान्यीकृत तो नहीं कर पाता है परंतु इन तथ्यों के आधार पर वह आसानी से कुछ परिकल्पनाओं का सृजन कर पाता है जिसे विधि का एक महत्वपूर्ण लाभ माना जा सकता है। चार केस अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसे प्राप्त तथ्यों के आधार पर भविष्य में किए जाने वाले अध्ययनों में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को पहले से ही आंका जा सकता है तथा उसे दूर करने के उपायों का वर्णन किया जा सकता है। पाँच इस विधि में चूंकि सामाजिक इकाई का गहन अध्ययन किया जाता है इसलिए इसमें संबंधित इकाई के व्यवहार परक पैटर्न को पूर्ण रूप से समझने में मदद मिलता है। इस बिंदु पर कूली ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि केस अध्ययन संबंधित इकाई के प्रत्यक्षण में गहराई पैदा कर देता है और उसके जीवन इतिहास के बारे में एक स्पष्ट सूझ उत्पन्न करता है। इसमें इकाई के व्यवहारों का अध्ययन प्रत्यक्ष रूप से होता है। 6. यह विधि सामाजिक इकाई के स्वाभाविक इतिहास के बारे में जानने में मदद करने के साथ ही साथ इसका संबंध वातावरण के अन्य सामाजिक कारकों से भी स्थापित करने में मदद करता है। 7. केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित कार्य के लिए प्रश्नावली या अनुसूची बनाने में मदद मिलती है। 8. परिस्थिति की जरूरत के अनुरूप इस विधि में शोधकर्ता केस अध्ययन विधि में कई शोध प्रविधियों का उपयोग आसानी से कर लेता है। दूसरे शब्दों में तब यह कहा जा सकता है कि इस विधि में अन्य विधियां जैसे गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची का उपयोग संभव है। 9. केस अध्ययन विधि से शोधकर्ता की अनुभूतियां मजबूत होती हैं और इससे फिर उसमें परिस्थिति को समझने एवं विश्लेषण करने की क्षमता और भी अधिक तीक्ष्ण होती है। 10. केस अध्ययन विधि में चिकित्सीय एवं प्रशासनिक उद्देश्यों को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। केस अध्ययन के आधार पर नैदानिक मनोवैज्ञानिक को चिकित्सा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सुविधा होती है तथा प्रबंधकीय एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी केस अध्ययन शोधकर्ता को इकाई के व्यवहार पर व्यवहारिक समस्याओं को समझने में मदद करता है। पैराग्राफ चेंज। इन लाभों के बावजूद केस अध्ययन विधि में कुछ खामियां भी हैं जो निम्नांकित हैं। 1. केस अध्ययन विधि में आत्मनिष्ठता अधिक पाई जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव अध्ययन के निष्कर्ष पर पड़ता है। इस विधि में शोधकर्ता तथा अध्ययन के लिए चुने गए सामाजिक इकाई में अधिक घनिष्ठता तथा सौहार्द स्थापित हो जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि शोधकर्ता सामाजिक इकाई से प्राप्त तथ्य का सही सही वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नहीं कर पाता है। 2. केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता में निश्चितता का मिथ्या भाव फॉल्स सेंस उत्पन्न हो जाता है। शोधकर्ता अपने निष्कर्ष के बारे में इतना विश्वस्त हो जाता है कि वह अपने अध्ययन में सम्मिलित केसेस का प्रतिनिधि मानकर एक खास तरह के परिणाम के बारे में पूर्णतः निश्चित हो जाता है। कि इस तरह की निश्चितता का कुप्रभाव यह होता है शोधकर्ता शोध डिजाइन के मूलभूत नियमों को पूर्णतः उपेक्षा इग्नोर कर बैठता है। गुड़ी तथा हॉट 1987 के इस अवगुण पर टिप्पणी करते हुए कहा है, कोट, शोधकर्ता अपने निष्कर्ष के बारे में अनिश्चितता का एक मिथ्या भाव विकसित कर लेता है। इस भाव के परिणाम कई होते हैं परंतु इनमें से अधिकतर को एक ही मुख्य शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है, शोध डिजाइन के मूलभूत नियमों की उपेक्षा करने का प्रलोभन, अनकोट। 3. केस इस अध्ययन विधि में शोधकर्ता को पूर्ण जवाबदेही इस बात की भी दी जाती है कि वह किसी सामाजिक इकाई जैसे व्यक्ति या परिवार के इतिहास तैयार करे। ऐसा करने के लिए वह काफ़ी प्रयास कर सामाजिक इकाई के बारे में बहुत सारी सूचनाओं की तैयारी करता है तथा उसका विश्लेषण करता है। इसके द्वारा दी गई सूचनाओं की वैधता की जांच करने का कोई तरीका इस विधि में नहीं बदलाया गया है। वह जो कुछ भी सूचना प्रदान करता है उसे सही मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। अतः आलोचकों ने केस अध्ययन विधि को एक पूर्ण वैज्ञानिक विधि नहीं माना है। 4. केस अध्ययन विधि द्वारा अध्ययन में समय काफ़ी लगता है। शोधकर्ता को प्रत्येक केस के बारे में विस्तृत रूप से सूचनाएं तैयार करना होता है। सच पूछा जाए तो शोधकर्ता को केस के सभी पहलुओं अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनका इतिहास तैयार करना होता है। इसलिए यह काफ़ी समय लेने वाली विधि होती है। साथ ही साथ यह विधि एक खर्चीली विधि भी है क्योंकि इसमें धन की बर्बादी भी कम नहीं होती है। 5. केस अध्ययन विधि में चूंकि शोधकर्ता व्यक्ति से उनके गत अनुभूतियों एवं घटनाओं के बारे में पूछकर एक इतिहास तैयार करता है जिसका बाद में विश्लेषण कर कोई निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है, अतः इस बात की संभावना काफ़ी अधिक बनी हुई रहती है कि व्यक्ति अपनी मत अनुभूतियों का, विशेषकर उन अनुभूतियों का जो काफ़ी समय पहले घटित घटनाओं पर आधारित हैं, ठीक ठीक बदला न पाए। ऐसी परिस्थिति में इन विधि द्वारा प्राप्त सूचनाएं बहुत अर्थपूर्ण नहीं रह जाती हैं। 6. केस अध्ययन विधि में शोधकर्ता किसी एक केस का अध्ययन कर निश्चित निष्कर्ष पर पहुँच जाना चाहता है। अक्सर देखा गया है कि मात्र किसी एक केस के अध्ययन के आधार पर लिया गया निष्कर्ष सही ढंग नहीं होता है, अतः वह निष्कर्ष संबंधित केस के लिए सही भी हो जाए तो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती है कि उसे अन्य समान व्यक्तियों या सामाजिक इकाइयों के लिए भी सही माना जा सकता है। साथ केस अध्ययन कई पूर्व कल्पनाओं अजम्पशंस पर आधारित होते हैं जो कभी कभी वास्तविकता की कसौटी पर सही नहीं उतरते हैं। परिणाम स्वरूप केस अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़े हमेशा शक के घेरे में होते हैं। 8 केस अध्ययन का उपयोग सीमित क्षेत्र में होता है, इसे बड़े समूह या समाज के अध्ययन में उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस विधि में प्रतिदर्शन का भी उपयोग संभव नहीं है। 9 केस अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़े संदूषित हो सकते हैं क्योंकि इसमें प्रयोज्य वही कहता है या लिखता है जिसे शोधकर्ता चाहता है। पैराग्राफ चेंज, इससे स्पष्ट है कि केस अध्ययन विधि में कई खामियां हैं। इन खामियों के बावजूद केस अध्ययन विधि का प्रयोग व्यवहार परक विज्ञान के शोध में काफ़ी हो रहा है। पैराग्राफ चेंज, केस अध्ययन एकाकी प्रयोज्य प्रयोग तथा केस इतिहास में अंतर। डिस्टिंक्शन एमंग केस स्टडी सिंगल सब्जेक्ट एक्सपेरिमेंट एंड केस हिस्ट्री। केस अध्ययन में जैसा कि हम जानते हैं किसी एक केस का जो कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है या परिस्थिति का भी गहराई से अध्ययन किया जा सकता है। केस अध्ययन के समान एकाकी प्रयोज्य प्रयोग में भी एक ही व्यक्ति पर अध्ययन किया जाता है, परंतु इन दोनों में अंतर है जो निम्नलिखित है। एक केस अध्ययन एक अप्रयोगात्मक शोध नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है जबकि एकाकी प्रयोज्य एक प्रयोगात्मक शोध होता है। 2 केस अध्ययन में स्वतंत्र चरों का जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है जबकि एकाकी प्रयोज्य प्रयोग में स्वतंत्र चरों में जोड़ तोड़ स्पष्ट रूप से किया जाता है। पैराग्राफ चेंज, कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा केस अध्ययन तथा इससे मिलते जुलते एक अन्य शोध अध्ययन विधि जिसे केस इतिहास कहा जाता है में भी अंतर किया गया है। केस अध्ययन में वैज्ञानिकों द्वारा एक अग्रदर्शी एवं अनुधैर्य दृष्टिकोण अपनाया जाता है जबकि केस इतिहास में एक अनुदर्शी एवं पुरालेखीय दृष्टिकोण अपनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि केस अध्ययन में शोधकर्ता चुने गए केस का अध्ययन आगे आने वाले भिन्न भिन्न समय अंतरालों पर करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है जबकि केस इतिहास में शोधकर्ता चुने गए केस के बीते व्यवहारों घटनाओं या इसके बारे में विभिन्न स्रोतों जैसे स्कूल अस्पताल सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों आदि में लिखित अभिलेखों से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाता है। पैराग्राफ चेंज, केस अध्ययन विधि के दोषों को दूर करने के उपाय। मेजर्स ऑफ रिमूविंग लिमिटेशंस ऑफ केस स्टडी मेथड। केस अध्ययन विधि में कई तरह के दोष हैं। स्वभावतः यहाँ यह प्रश्न उठता है कि क्या इन दोषों को दूर नहीं किया जा सकता। इन प्रश्न का उत्तर शोध वैज्ञानिकों ने सकारात्मक रूप से देने की कोशिश की है। इन वैज्ञानिकों के अनुसार केस अध्ययन विधि के कम से कम कुछ प्रमुख दोषों को तो निश्चित रूप से दूर किया जा सकता है। 1, कुछ वैज्ञानिकों का जिनमें एरोनसन 1980 गुडे तथा हॉट 1987 प्रमुख हैं का मत है कि शोधकर्ता को इस विधि द्वारा अध्ययन करने में एक प्रतिदर्श सैंपल का निष्पक्ष चयन कर लेना चाहिए न कि सिर्फ किसी एक केस का अध्ययन कर अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से केस अध्ययन विधि की अधिकतर शिकायतें अपने आप दूर हो जाएंगी जैसे उपयुक्त प्रतिदर्श के चयन के बाद शोधकर्ता द्वारा गलत निर्णय पर पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इस उसके द्वारा सूचना भी अधिक वैध एवं विश्वसनीय होगी तथा अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी गत अनुभूतियों का अनुपयुक्त प्रत्याहन संबंधी मूल भूल आदि में काफ़ी कमी आ जाएगी। प्रतिदर्श का चयन कर अध्ययन करने से शोधकर्ता को समय की भी बचत कुछ हद तक हो सकती है। 2, प्रतिदर्श की जीव संख्या का प्रतिनिधि बनना। शोधकर्ता को चाहिए कि केस अध्ययन विधि में जब वह एक प्रतिदर्श का चयन कर रहा है तो प्रतिदर्श जीव संख्या का सही सही प्रतिनिधित्व करता हो। किसी प्रतिदर्श में जब प्रतिनिधित्व का गुण बढ़ता है तो उससे प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा वैधता में भी वृद्धि होती है। 3, सूचनाओं का वस्तुनिष्ठ कोडिंग करना। यदि शोधकर्ता केस अध्ययन विधि से प्राप्त आंकड़ों को एक वस्तुनिष्ठ कोडिंग करता है तो इससे सूचनाओं में किसी तरह के हेर फेर करने की संभावना समाप्त हो जाती है और तब उसका उचित सांख्यिकीय विश्लेषण भी आसानी से हो पाता है। 4, शोधकर्ता को विशिष्ट प्रशिक्षण देना। केस अध्ययन विधि को उन्नत बनाने का एक तरीका यह भी है कि शोधकर्ता जो इस विधि द्वारा अध्ययन करने वाले हैं को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित शोधकर्ता के होने पर निश्चित रूप से इस विधि से प्राप्त आंकड़ों की विश्वसनीयता तथा वैधता काफ़ी बढ़ जाएगी। स्पष्ट हुआ कि केस अध्ययन विधि उसी को आवश्यकतानुसार उन्नत बनाया जा सकता है।